आज कल
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम ब्रिटेन में मानवाधिकार के हनन के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
पिछले कार्यक्रम में ब्रिटेन में धार्मिक व जाति अल्पसंख्यकों के अधिकारों और इसी तरह महिलाओं व बच्चों के अधिकारों के हनन की ओर संकेत किया गया। इस कार्यक्रम में हम ब्रिटेन में मानवाधिकार के हनन के अन्य विषयों पर प्रकाश डालेंगे। मजदूरों, कार्मिकों और कर्मचारियों, शिक्षकों, प्रोफेसरों, यहाँ तक कि चिकित्सकों के अधिकारों का हनन उन मामलों में से है जिनका ब्रिटेन में व्यापक स्तर पर हनन होता है। समाचार पत्र गार्डियन ने 31 अक्टूबर 2016 को अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पेंशन कम किए जाने और लोगों को नौकरियों से निकाले जाने के कारण पोस्ट, रेलवे और विमानन उद्योग के हजारों कर्मचारियों ने हड़ताल की।
इसी तरह जनवरी 2015 में लंदन में बस सर्विस के चालकों ने कम वेतन और नौकरी की खराब स्थिति के चलते व्यापक हड़ताल की थी। बस सर्विस के लगभग 27,000 कर्मचारियों ने अपनी यूनियन के समन्वय से इस हड़ताल में भाग लिया। पूरे ब्रिटेन की यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर भी कई बार अपने कम वेतन और सुविधाओं की खराब स्थिति के कारण हड़ताल कर चुके हैं। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और डॉक्टर भी अपने अधिकारों के हनन के कारण कई बार हड़ताल कर चुके हैं। डॉक्टरों का कहना था कि सरकार नए समझौतों को लागू करके उनकी कार्यावधि को बढ़ाएगी और वेतन कम करेगी।
ब्रिटेन में मानवाधिकार के हनन का एक अन्य विषय सामाजिक असुरक्षा है। सन मैगजीन ने 28 अक्टूबर वर्ष 2016 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसके अनुसार ब्रिटेन की सड़कों पर इस समय लगभग 50,000 यौन शोषणकर्ता मौजूद हैं। ये संख्या पिछले दशक की तुलना में 70 गुना बढ़ी है। सामाजिक असुरक्षा के कारण आत्महत्या जैसी गंभीर सामाजिक समस्याएं और युवाओं के बीच अवसाद जैसे रोग बढ़ने लगे हैं। समाचार पत्र गार्डियन ने 12 मई सन 2016 को एक रिपोर्ट में लिखा था कि वर्ष 2015 में ब्रिटेन में आत्महत्या करने वालों की संख्या पिछले 20 वर्षों की तुलना में अभूतपूर्व थी। बच्चों और किशोरों में अवसाद भी ब्रिटेन की सामाजिक समस्याओं में से एक है। यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन के निकलने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति चिंता, आतंकी खतरों में वृद्धि और सामाजिक असुरक्षा ब्रिटेन के बच्चों व किशोरों की अहम समस्याओं में शामिल है।
ब्रिटेन में अधिकतर संचार माध्यम बड़ी आसानी से इस देश के जातीय व धार्मिक अल्पसंख्यकों का अनादर करते हैं। ये स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्च मानवाधिकार आयोग के प्रमुख जैद राद हुसैन ने 24 अप्रैल सन 2015 को एक बयान जारी करके कहा था कि सन पत्रिका की ओर से पलायनकर्ताओं को कॉकरोच बताया जाना अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि नाजी काल के संचार माध्यम लोगों से कहते थे कि उच्चाधिकारी कॉकरोचों और चूहों को समाप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार के शब्द और वो भी बड़ी संख्या में प्रकाशित होने वाली पत्रिका में अस्वीकार्य और द्वेष फैलाने वाले हैं। इसी समाचार पत्र में केटी हॉपकिंस का एक लेख प्रकाशित हुआ था जिससे काफ़ी हंगामा मचा था। उन्होंने इस लेख में सुझाव दिया था कि भूमध्य सागर में पलायनकर्ताओं को लेकर आने वाली नौकाओं के खिलाफ युद्धक नौकाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने लेख में पलायनकर्ताओं को जंगली इंसान बताया था।
ब्रिटेन हमेशा से अन्य देशों में अभिव्यक्ति, आस्था और सभाओं की स्वतंत्रता की मांग करता आया है और इसे वो अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए हथकंडे के रूप में प्रयोग करता रहा है। यह ऐसी स्थिति में है जब स्वयं ब्रिटेन अभिव्यक्ति, आस्था और सभाओं के आयोजन की स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। इसी तरह ब्रिटेन में पत्रकारों के अधिकारों का भी बहुत हनन होता है। इस देश की सरकार आतंकवाद से संघर्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने से पत्रकारों की गिरफ्तार करती है। ब्रिटिश सरकार इन्हीं बहानों से पत्रकारों का लाइसेंस जब्त कर लेती है और कभी कभी तो उन्हें निर्वासित कर देती है। इस संबंध में एक ब्रिटिश पत्रकार सारा हैरिसन की ओर संकेत किया जा सकता है, जिन्हें अंग्रेज अधिकारियों के भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करने वाली वेबसाइट विकिलीक्स के साथ सहयोग करने के कारण ब्रिटेन निर्वासित कर दिया गया है।
ज़ायोनी लॉबियों की गतिविधियों के बारे में बात करना और इसराइली शासन के अपराधों को सार्वजनिक करना ब्रिटेन की सरकार की रेडलाइनों में से एक है और व्यवहारिक रूप से इस देश के संचार माध्यमों, पत्रकारों, यूनिवर्सिटियों और प्रोफेसर और आम लोगों को इसराइल की आलोचना का अधिकार नहीं है। डेली टेलीग्राफ के अनुसार 4 अप्रैल 2016 को ब्रेडफोर्ड नगर में लेबर पार्टी के सांसद नाशा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनी शासन के अपराधों की आलोचना करते हुए इसराइल को अमेरिका में स्थानांतरित किए जाने की मांग की। उन्होंने इसी तरह अपने ट्वीट में कहा था कि अमरीकी खुले मन से इसराइलियों को बाहों में लेंगे और साथ ही इससे मध्य पूर्व में अमेरिका का विदेशी हस्तक्षेप भी समाप्त हो जाएगा। नाशा के इस ट्वीट पर स्वयं उनके दल के लोगों और ज़ायोनी लॉबी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई, जिसके बाद वे अपने पद से त्यागपत्र देने पर मजबूर हो गए।
ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेन की गुप्तचर संस्थाओं की ओर से इस देश के नागरिकों की जासूसी ब्रिटेन में मानवाधिकार के हनन का एक अन्य विषय है। टेलीफोनिक संवादों को रिकॉर्ड करना, बड़ी संख्या में गुप्त कैमरे लगाना और अस्पष्ट सुरक्षा कारणों से लोगों के घरों पर हमले करना ब्रिटेन में मानवाधिकारों का व्यापक हनन समझा जाता है। कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि चेल्टनहाम के किसी केंद्र में ब्रिटिश सरकार की ओर लोगों के संवाद सुनने और उनके बारे में सूचना एकत्रित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगाए गए हैं। वर्ष 1984 में दूर संचार के कानून में किए गए एक संशोधन के आधार पर ब्रिटेन की गुप्तचर संस्थाओं को ये शक्ति हासिल हुई है। पीसी वर्ल्ड ने 10 अप्रैल 2015 को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार ब्रिटेन के एक मानवाधिकार संगठन ने न्यायालय में मुकदमा दायर करके इस देश में फोन टैपिंग बंद किए जाने की मांग की थी। प्राइवेसी इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष एरिक किंग कहते हैं कि इन सूचनाओं का प्रयोग, जिनमें से कुछ नागरिकों की स्वेच्छा से हासिल की गई हैं, कुछ चोरी की गई हैं और कुछ जोर जबरदस्ती करके प्राप्त की गई हैं, मानवाधिकारों का हनन है और इसे रुकना चाहिए।
हिंसा व यात्राओं के साथ ब्रिटेन में जेलों की दयनीय स्थिति भी इस देश के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की अहम चिंताओं में से एक है। कैदियों को पुलिस द्वारा भी और जेल प्रशासन द्वारा भी मारा पीटा जाता है और यातनाओं का निशाना बनाया जाता है। बंदियों के साथ अनुचित व्यवहार उनके बीच अवसाद फैलने बल्कि आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि का कारण बना है। 11 दिसंबर 2016 को एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 साल में ब्रिटेन और वेल्स में गिरफ्तार होने वालों में से 400 बंदियों ने अपनी गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद आत्महत्या कर ली। ब्रिटेन की जेलों में कैद बंदियों के बीच मानसिक रोगियों की संख्या भी चिंताजनक है। गार्डियन 23 अक्टूबर 2015 को बताया था कि ब्रिटेन की जेलों में 4000 से अधिक मानसिक रोगी हैं। जेलों की कैदियों की अधिक भीड़ और स्वास्थ्य व चिकित्सा मानकों की अनदेखी भी इस देश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की चिंताओं में से एक है।
दास प्रथा विदित रूप से पश्चिमी देशों में समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये ब्रिटेन में अब भी जारी है। इंडिपेंडेंट 22 अगस्त 2016 को अपनी एक रिपोर्ट में सालवेशन ग्रुप के हवाले से बताया था कि पिछले 4 साल में ब्रिटेन और वेल्स में दास प्रथा का शिकार होने वालों की संख्या 5 गुना हो गई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटेन में लगभग 13,000 लोग व्यवहारिक रूप से दासों की जिंदगी जी रहे हैं। इसमें महिलाओं को देह व्यापार के लिए मजबूर करना, जबरदस्ती मजदूरी कराना और कारखानों व खेतों में कार बनवाना शामिल है।
ब्रिटेन में मानवाधिकार के हनन के सबसे बुरे विषयों में से एक शरणार्थियों और पलायनकर्ताओं के साथ लोगों का रवैया है। इस देश में शरणार्थियों की गिरफ्तारी के आंकड़े काफ़ी चिंताजनक हैं। पुलिस और सुरक्षाकर्मी अधिकांश अवसरों पर बिना किसी कारण के शरणार्थियों को अकेले या सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार करते हैं। वर्ल्ड बुलेटिन नामक वेबसाइट ने 8 दिसंबर 2016 को बताया था कि ब्रिटेन में हर दिन औसतन 40 शरणार्थियों को गिरफ्तार किया जाता है। शरणार्थियों व पलायनकर्ताओं की अनुचित स्थिति पर ब्रिटेन की जनता और नागरिक समाज ने गहरी आपत्ति जताई है। 8 नवंबर 2015 को ब्रिटेन में सैकड़ों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने शरणार्थियों व पलायनकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ ब्रेडफोर्ड में शरणार्थियों की जेल के सामने प्रदर्शन किया था और तुरंत इस केंद्र को बंद करने की मांग की थी।